लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बनता है, जो कृपणता से देता है वह दरिद्र बनता है। उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है। जो दूसरों को पिलाता है उसे भी पिलाया जाएगा। लोग अनाज के जमाखोरों को कोसते हैं और अनाज बेचने वाले को आशीर्वाद देते हैं। जो भलाई करता रहता है उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त है। जो बुराई करता रहता है उसका अंत बुरा होगा। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 24 से लेकर 27 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस तथ्य की ओर हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि हम मनुष्य अपने मन की भावनाओं के अनुकूल बाइबल के शब्दों की व्याख्या करते हैं, और इसीलिए कई बार दुष्ट व्यक्तियों के लिए प्रभु के कोप की बात करते हैं। जबकि सच तो यह है कि प्रभु ईश्वर प्रेमी पिता हैं। वे दयावान और कृपावान ईश्वर हैं। वे मनुष्यों पर क्रोध नहीं करते, बल्कि अनवरत उन्हें सीधे मार्ग पर चलने का मौका दिया करते हैं। श्रोताओ, वस्तुतः सूक्ति ग्रंथ का लेखक भी मानवीय भावनाओं के अधीन रहकर दुष्ट व्यक्ति का अंत किस प्रकार होगा उसका वर्णन करता है। वह सचेत करता है कि दुष्ट कामों में लगने वाले अपना ही अहित करते हैं, क्योंकि दुष्ट कर्मों का अंजाम बुरा होता है। उक्त पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक उदार मना व्यक्ति की प्रशंसा करता है। उदार मना वह है जो विवेकपूर्ण तरीके से अपनी कमाई खर्च करता और अपने हिस्से में से जरूरतमंद की मदद को भी तैयार रहता है। वह उसी तरह बढ़ता रहता है जैसे गेहूं का दाना मिट्टी में बोने से बढ़ जाता है। लेखक का परामर्श है, हमारे पास जो कुछ है उसका हम आनंद पूर्वक उपयोग करें, किंतु अपने जरूरतमंद भाई को कदापि न भूलें। दान देने से और अधिक बढ़ जाता है। यह ध्यान में रखते हुए हम दान देने से कतराए नहीं, नाम कमाने या दिखावे के लिए दान नहीं दें, बल्कि मन से किसी की मदद करने के लिए दान दें और ईश्वर के आशीर्वाद के हकदार बने। श्रोताओ, इस बात पर चिंतन जरूरी है कि ईश्वर द्वारा हमें उदारता से मिले वरदानों का हम क्या करते हैं, कैसे हम इनका उपयोग करते हैं। कहीं हम भी जमाखोरों की तरह अपने वरदानों को अपने ही लिए तो नहीं रख रहे, ताकि बाजार गर्म होने पर उससे और अधिक कमा सकें। यह जानकर भी कि ऐसा करना गलत है, हम इस प्रकार के लालच में पड़ जाते हैं। इसी के प्रति सूक्ति ग्रंथ में चेतावनी दी गई है। ईश्वर से मिली देन में हम जरूरतमंद को भी भागीदार बनाएं। इसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि सूक्ति ग्रंथ के अनुसार जो भलाई करता रहता है उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। बाइबल धर्म ग्रंथ में हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां उदार मना व्यक्ति जो कुछ उनके पास है उसे ईश्वर की कृपा दृष्टि का फल मानते हैं। जैसे प्राचीन व्यवस्थान में निहित उत्पत्ति ग्रंथ के 33वें अध्याय के 11वें पद में याकूब एसाव से कहते हैं, जो उपहार मैं आपके लिए लाया हूँ उसे आप स्वीकार कर लें, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की है और मेरे पास बहुत है। फिर नवीन व्यवस्थान में कुरिन्थियों को प्रेषित दूसरे पत्र के 9वें अध्याय के 5वें पद में संत पॉल भी यही परामर्श देते हैं, लिखते हैं, मैंने भाइयों से यह अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वे पहले आपके यहाँ आए और ऐसा प्रबंध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है वह मेरे पहुंचने से पहले तैयार हो और वह आपकी कृपणता का नहीं बल्कि आपकी उदारता का प्रमाण हो।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
आगे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के अंतिम 4 पदों में लेखक कहता है, जिसे अपनी संपत्ति का भरोसा है उसका पतन होगा, किंतु धर्मी नए पौधों जैसा लहलहाएगा। जो अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रखता उसकी विरासत नष्ट हो जाएगी। मूर्ख बुद्धिमान का नौकर रहेगा, धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होगा। बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है। यदि धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं मिलता। श्रोताओ, 28वें पद की सूक्ति हमें धन संपत्ति का मूल्य सिखाती है और साथ ही इस तथ्य के प्रति चेतावनी देती है कि यदि हमारा पूरा भरोसा धन पर ही होगा तो हमारा पतन अवश्यम भावी है, क्योंकि धन ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। तथापि धर्म और विश्वास का पालन करने वाले फलते फूलते गए। लेखक कहता है, धर्मी नए पौधों जैसा लहलहाएगा। धर्मी पुरुष और धर्मी स्त्री धन पर नहीं परंतु ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जो उन्हें सचमुच में एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। फिर लेखक सावधान कर कहता है, जो अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रखता उसकी विरासत नष्ट हो जाएगी और मूर्ख बुद्धिमान का नौकर बनेगा। श्रोताओ, अपनों के लिए मुसीबत लाना ही तूफान और मुश्किलों से भरा भविष्य तैयार करना होता है। प्राचीन व्यवस्थान में निहित समुएल के पहले ग्रंथ के 25वें अध्याय में हमें नाबाल और अबिगैल की कथा पढ़ने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि नाबाल ने अपने अन्न और जल को अपने और अपने घराने के लिए सुरक्षित रखकर खुद अपने घराने पर विपत्ति बुलाई थी, जबकि अबिगैल ने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर उस घराने को बचा लिया था। यह सूक्ति की मूर्ख बुद्धिमान का नौकर बनेगा से तात्पर्य यही कि मूर्ख अपने ही गुमान में रहता है और इस भ्रम में पड़ा रहता है कि उसे सब कुछ आता है, उसे किसी की जरूरत नहीं, और इसीलिए वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी ओर बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उनके नियमों पर चलता है। उसी को ईश्वर ऊपर उठाते और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 11वें अध्याय के अंतिम 2 पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक मानो प्रश्न करता है, धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होगा। श्रोताओ, धर्मपरायण व्यक्ति का जीवन फलप्रद सिद्ध होता है। वह केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी ईश्वर की आशीष को पाने में सफल होता है, यानी अन्यों के लिए जीवन का स्रोत बनता है। नवीन व्यवस्थान में निहित गलातियों और एफेसियों को प्रेषित पत्र में संत पॉल लोगों पर ईश्वर के आत्मा के फल की बात करते हैं। गलातियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 22वें और 23वें पदों में लिखते हैं, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और एफेसियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 9वें पद में ज्योति की संतान के सदृश आचरण का आग्रह कर स्मरण दिलाते हैं। जहां ज्योति है वहां हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। 11वें अध्याय का अंतिम पद कि यदि धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं मिलता, हमारे मन को कुछ विचलित कर देता है। किंतु इसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। वस्तुतः इस सूक्ति में न केवल एक स्पष्ट और दृश्यमान सत्य है अपितु एक ऐसा सत्य निहित है जिस पर विचार जरूरी है। इस प्रकार का प्रश्न संत पेत्रुस के पहले पत्र के 4वें अध्याय के 17वें पद में हम पाते हैं। संत पेत्रुस लिखते हैं, न्याय ईश्वर के घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास नहीं करना चाहते। सार यही कि सबको अपने किए का फल मिलेगा, दुष्ट को दंड और धर्मी को पुरस्कार।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के लिए एक संदेश भेजा है। इस साल सृष्टि की अवधि के लिए विषय वस्तु है सृष्टि की आवाज सुनना। ख्रिस्त एकता वर्धक वार्ता की पहल पर स्थापित इस अवधि की शुरुआत 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के साथ होगी और इसका समापन 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व के साथ होगा। संत पापा ने संदेश में लिखा, यह सभी ख्रिस्तियों के लिए हमारे आम घर की देखभाल हेतु प्रार्थना एवं एक साथ कार्य करने का एक विशेष समय है। कुस्तुनतुनिया के प्राधिधर्म अध्यक्ष की प्रेरणा पर यह काल हमारे पारिस्थितिक रूपांतरण को विकसित करने का एक अवसर है। इस परिवर्तन का प्रोत्साहन संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने पारिस्थितिक आपदा के जवाब के रूप में दिया था तथा संत पापा पॉल छठवें ने 1970 में इसकी भविष्यवाणी की थी। संत पापा ने कहा, यदि हम सुनना सीख जाते हैं तो हम सृष्टि की आवाज को एक बेसुरापन के रूप में सुन सकते हैं। एक ओर हम हमारे प्यारे सृष्टिकर्ता की स्तुति में मधुर संगीत सुनते, वहीं दूसरी ओर हमारे आम घर की एक व्यथित याचिका को भी सुनते हैं जो हमारे दुर्व्यवहार पर विलाप कर रही है। सृष्टि का मधुर संगीत हमें पारिस्थितिक आध्यात्मिकता को जीने का निमंत्रण देता है और सृष्टि जगत में ईश्वर की उपस्थिति पर ध्यान देने हेतु प्रेरित करता है। यह हमारी आध्यात्मिकता को इस चेतना पर आधारित करने का आह्वान है कि हम बाकी जीव जंतुओं से अलग नहीं हैं, बल्कि उनके साथ शानदार सार्वभौमिक मिलन में भाग लेते हैं। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्त के अनुयायियों के लिए यह उज्जवल अनुभव हमारी उस जागरूकता को पुष्ट करता है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसके बिना एक भी चीज अस्तित्व में नहीं आई है। उन्होंने कहा कि सृष्टि के इस काल में हम सृष्टि के महान गिरजाघर में फिर से प्रार्थना करते और असंख्य जीव जंतुओं के द्वारा गाये भव्य ब्रह्मांडीय संगीत का आनंद लेते हैं जो ईश्वर की स्तुति करते। आइए हम संत फ्रांसिस असीसी के साथ गाएं, मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो समस्त सृष्टि के लिए। हम स्तोत्रकारों के साथ गाएं, सब प्राणी प्रभु की स्तुति करें। किंतु संत पापा ने गौर किया कि दुर्भाग्य से इस मधुर संगीत के साथ वेदना का रोदन है। पहले स्थान पर हमारी बहन माता पृथ्वी की जो रो रही है, जो हमारे उपभोक्तावाद के शिकार है, वह हमारे शोषण एवं विनाश को बंद करने का आग्रह कर रही है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जीव जंतु हैं जो रो रहे हैं। संत पापा ने कहा कि सृष्टि के कार्य में ईश्वर की केंद्रियता के बिल्कुल विपरीत एक अत्याचारी मानव केंद्रियता पर अनगिनत प्रजातियां मर रही हैं और उनकी स्तुति के भजन खामोश हो गए हैं। हमारे बीच सबसे गरीब लोग भी रो रहे हैं। वे जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं और उन पर अकाल, बाढ़, तूफान और गर्म हवाओं का प्रभाव पड़ रहा है। संत पापा ने संदेश में कहा है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और अपने जीवन शैली एवं विनाशकारी प्रणालियों को संशोधित करना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस ने 21 जुलाई को एक ट्वीट प्रेषित कर दादा दादी की जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए कहा, हम दादा दादी एवं बुजुर्गों की एक बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को यह सिखाने के लिए कि हम अपने पोते पोतियों को समान समझ और प्यार भरे निगाहों से कैसे देखते हैं। हम जीवन के शिक्षक हो सकते हैं जो शांतिपूर्ण एवं सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान देता है। संत पापा फ्रांसिस रविवार को कनाडा की प्रेरितिक यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं या इटली के बाहर उनकी 37वीं प्रेरितिक यात्रा होगी। वे कनाडा के एडमोंटन, क्यूबेक और इकालुइट के शहरों की यात्रा करेंगे जहां संत पापा मूल निवासी लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करेंगे जिन्होंने अपनी संस्कृति को समाप्त किए जाने की कोशिश के कारण दुख सहा है, विशेषकर आवासीय शिक्षा प्रणाली में। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि संत पापा फ्रांसिस की कनाडा की प्रेरितिक यात्रा सबसे बढ़कर प्रायश्चित की तीर्थ यात्रा होगी जिसके द्वारा देश के मूल निवासी लोगों की चंगाई एवं मेल मिलाप को बल मिलेगा, जिनसे संत पापा ने वैटिकन में अप्रैल में मुलाकात की थी। बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने संत पापा की 37वीं प्रेरितिक यात्रा को प्रस्तुत किया। उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा 56वां देश होगा जहां संत पापा फ्रांसिस यात्रा करने वाले हैं। वे अपने पूर्वाधिकारी संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के पदचिन्हों पर उनकी यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने अपने परमाध्यक्ष काल में 3 बार कनाडा की यात्रा की थी। ब्रूनी ने याद किया कि संत पापा फ्रांसिस कैसे क्यूबेक के व्यूप्रे में संतन्ना की राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा का भी दौरा करेंगे जहां वे अपने पूर्वाधिकारी की तरह ख्रिस्त त्याग अर्पित करेंगे। तीर्थस्थल में संत पापा पुनः पोप जॉन पॉल द्वितीय की तरह प्रथम मूलवासी संत कत्तेरी टेकक्विता की याद करेंगे एवं उनकी प्रतिमा की आशीष करेंगे। मत्तेओ ब्रूनी ने गौर किया कि संतन्ना मूल निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर बुजुर्गों और नाना नानी के सम्मान में। यीशु के नाना नानी संतन्ना और उनके पति संत जोआकिम, दादा दादी और बुजुर्गों के संरक्षक संत हैं। संत पापा की प्रेरितिक यात्रा कनाडा की कलीसिया एवं नागरिक अधिकारियों तथा कनाडा के मूल वासियों के ही निमंत्रण का प्रत्युत्तर है। यात्रा का एक खास समय इकालुइट होगा जब संत पापा आवासीय विद्यालय के कुछ पूर्व विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे जहां मूल वासी बच्चे कठोर अनुशासन के शिकार हुए और कभी कभी दुर्व्यवहार एवं बुरे वर्ताव का सामना किया। अब इससे समझ लिया गया है कि आवासीय स्कूल प्रणाली उनकी संस्कृति को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रणाली के कारण मूलवासी बच्चों को अपने परिवार से अलग होना पड़ा और कभी कभी अपने इच्छा के विपरीत जाना पड़ा। इन संस्थानों में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी जिन्हें कनाडा सरकार ने स्थापित किया था और इसके प्रबंधन के लिए ख्रिस्त समुदाय को सौंप दिया गया था जिसमें कार्तिक धर्म प्रांत एवं धर्म सामाजिक समुदाय भी शामिल थे। जेसुइट पुरोहित फादर डिएगो फारेस का निधन मंगलवार को एक लंबी बीमारी के बाद रोम में हुआ। वे 66 साल के थे। वे 2016 से ही ला चिविल्ता कैथोलिका पत्रिका के लेखक थे। लोगों के करीब, यीशु के करीब, संत पापा के ये विचार फादर डिएगो के जीवन एवं कार्यों में लगातार दिखाई देता है। संत पापा ने 10 जुलाई को अंतिम बार उनसे मुलाकात कर उनके प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।